करते हैं अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची लाहौर इस्लामाबाद भालपुर पिशावर सियालकोट दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम. आज है मंगल 11 ज़िलकाद 1444 जून की है 6 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ. नाम है मेरा दिल सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर दिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है. यह उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे. सुबह का आगाज भी अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा. और It's a bright, sunny and very humid morning, yaar. Honestly speaking, I mean, it's frustratingly humid right now. Very uncomfortable in Karachi. Aur subah chahe morning activity ki baat ho ya is waqt jab pahuncha, kyunki aaj thoda sa kuch minute main pehle aa gaya, to hamare jo lift dekhne wale babu hain, unko bhi shayad main aaj thoda sa dodge kar gaya, to unhone bhi lift nahi chalai. Jab main teesre floor pe pahuncha, to us waqt tak lift on ho gayi thi, to maine kaha ab kaun दो फ्लोर के लिए लिफ्ट ले, तो मैंने बाकी दो फ्लोर्स भी जो हैं वो चल के मैं इधर स्टूडियो में आके बैठ गया. बट इट्स वेरी वेरी ह्यूमिड और बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है. और आपको पता है कि वो पता चला है कि जी बोरा अरब में एक समंदरी तूफान जो है वो जन्म ले रहा है. बल्कि अगर आप कोई सेटेलाइट पिक्चर या कोई वेदर ऐप के थ्रू अगर आप तस्वीर ले सकते हैं जो कि मौसम की सूरत हाल या बादलों की जो डायरेक्शन है उस पर नज़र डाल सके, तो आपको उससे अंदाज़ा होगा कि एक वाकई पाकिस्तान से काफ़ी जनूब में एक देयर इज अ क्लस्टर ऑफ क्लाउड व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू टर्न इनटू अ साइक्लोन. लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि साइक्लोन से पाकिस्तान की जो सरहद है उसको नुकसान नहीं पहुंचना है. आमतौर से जनरली जैसा होता है ये साइक्लोन यमन और मस्कत की तरफ जो है ये बढ़ जाता है और जो वहाँ पे बारिशें होती हैं वो सब वहाँ हो रही होती हैं. अल्लाह ताला ने खास प्रोटेक्शन हमको जो है वो जरा इस ऐसा लगता है कि साइक्लोन से दी हुई है. लेकिन इन तमाम एक्टिविटीज का जो नुकसान होता है वो ये होता है कि कराची में और पाकिस्तान के साहिली इलाकों में बहुत शदीद कंडीशंस ह्यूमिडिटी और गर्मी की हो जाती है. और अगले हफ्ते हम शायद ये एक्सपेक्ट करने वाले हैं. कुछ इक्का दुक्का पता नहीं लोग अजीब सी बातें कर रहे हैं, कुछ बारिश भी हो सकती है. लेकिन वल्ला आलम मैन, बट दिस हैज़ बीन वेरी 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 अनकम्फर्टेबल वेदर. इट हैज़ टू बी मैन, सीरियसली. चलें आगे बढ़ते हैं और कैसी है प्रोग्राम में. अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. ये हंसी जो मुझे आ गई थी वो अभी आज की अखबारात की जो है वो हेडलाइन जिसे कहते हैं वो देखकर आ गई थी. और बड़ी मज़ेदार बातें हमारे जो है ना वो कहते हैं कि हमारे चीफ जस्टिस साहब करते हैं. लेकिन खैर चलें जी, चलें प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है हैश सनराइज विद अदील. और अभी मैं हैशटैग खोल रहा हूँ और मैं हैशटैग में जो है वो अभी I'm scrolling down. All right, चलें जी. और क्या सीन हुआ है, किधर हो भाई? हाँ, अब्दुल रजाक साहब क्या कहते हैं जी, नादरा ने आंखों के जरिए बायोमेट्रिक तस्दीक का निजाम आयरिस मुतारिफ करा लिया. आंखों के जरिए शनाख्त में गलती का इम्कान ना होने के बराबर है. आंख की कठपुतली के गिर्द दायरा नुमा आयरस में पूरी जिंदगी कोई तब्दीली नहीं आती. क्या बात है जी, जबरदस्त इसका नाम इन्होंने आयरस रखा. वैसे आयरस हमारे यहाँ एक और भी सॉफ्टवेयर का नाम है जो कि FBR जो है वो इस्तेमाल कर रहा होता है. वो भी कोई उनका एक सॉफ्टवेयर है आयरस, मेरे ख्याल से इस तरह का है. आयरस नाम का एक बड़ा मशहूर गाना भी था, आपको शायद याद है, गूगू डॉल्स का. अभी गाना है हमारे पास, जरा चेक करते हैं यार. ओहो, क्या गाना याद आ गया, मैं चेक करते हैं. अरे वाह वाह वाह, मिल गया गाना, मिल गया. और चलें ये गाना सुनेंगे यार, अंग्रेजी गाना सुनेंगे हम, गू गू डॉल्स विद आयरिस. अभी नहीं, थोड़ी देर में. ये मुझे रजाक साहब के मैसेज से याद आया कि नादरा ने सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जिसका नाम आयरिस है. बिल्कुल जी, इंसानी आंख की जो आइडेंटिफिकेशन होती है, आप हम हॉलीवुड फिल्मों में देख रहे हैं काफी दहाइयों से कि जिसमें आंख ला के एक दरवाजे के बाहर जो है वो लगा दी जाती है और एक लाइन आती है और फिर वो आपकी आंख को रिकग्नाइज करके दरवाजा जो है वो उससे खोला जाता है. किसी एक नॉवल में भी था कि विलन ने जो है वो एक एक्सेस वाले बंदे की आंख निकाल ली थी. अभी हाँ, आई थिंक किसी डैन ब्राउन नॉवल में इस तरह की मैंने चीज देखी है. लेकिन बहरहाल चलें जी, गुड ऑन नादरा. व्हाट आर द एप्लीकेशंस गोइंग टू बी ऑफ दिस, दैट रिमेंस टू बी सीन. तहसीन अमजद साहब कहते हैं, व्हाई BPO इंडस्ट्री इन पाकिस्तान फ्लरिशिंग, हाउ डज दिस इंडस्ट्री वर्क. देखिए, BPO जो कहते हैं ये बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इसको कहा जाता है तहसीन. और होता यह है कि कंपनी जो है वो अपने पूरे ऑपरेशंस का एक मखसूस हिस्सा जो है वो किसी और इदारे को आउटसोर्स कर देती है. नाउ ये जो काम होता है जनरली कंपनी को लगता ये है कि कोई और इदारा जो इन चीज़ों में स्पेशलाइज करता है या इसमें माहिरियत रखता है, महारत रखता है, माहिरियत कोई वर्ड नहीं होता, महारत रखता है, वो हमसे बेहतर ये काम कर सकता है. मसलन इसकी जो टिपिकल एक एग्जाम्पल है वो बीपीओ की होती है, कॉल सेंटर्स. आपको पता है कि पाकिस्तान में चंद एक बड़े इदारे हैं जो कि बहुत बड़े बड़े कॉल सेंटर्स ऑपरेट करते हैं, और अब इदारे ये समझते हैं कि जी अब खासतौर से जो मगरिब में इदारे हैं वो ये कहते हैं यार हम क्या बैठ के कॉल सेंटर्स बनाएंगे, बिकॉज वहाँ पे पर आर के हिसाब से जो आपको कॉस्ट देनी पड़ती है उसके मुकाबले में पाकिस्तान में जो कॉस्ट या इंडिया फिलीपींस में जो कॉस्ट देनी पड़ती है ये बिल्कुल मामूली सी होती है. सो वो प्रेफर ये करते हैं कि अपना कोई एक मखसूस प्रोसेस जो है उसको वो आउटसोर्स कर दें. आमतौर से अब तो आपको पता है कि डेटा को भी मैनेज करना, डेटा को सेव करना, ये सारी चीज़ें भी आउटसोर्स की जाती हैं. सो लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट कैन बी आउटसोर्स. इसे बीपीओ कहते हैं और पाकिस्तान में फ्लरिश कर रहा है. मुझे बड़ी खुशी हुई ये बात जान के, अल्लाह करे ऐसे ही हो रहा हो. जमीर साहब ने खबर शेयर किया, बिल्कुल जी आगे चल के प्रोग्राम में इस हवाले से हम बात कर सकते हैं. दुनिया में क्रिप्टो की सबसे बड़ी एक्सचेंज जिसको बाइनेंस कहा जाता है, उसके जो फाउंडर सीईओ है जिनका नाम सीजी भी बोलते हैं इनको, चेंग फेंग चाओ, उनके खिलाफ यानी उनकी कंपनी के खिलाफ जो है वो अमरीकी सरकार ने एक बड़ा मुकदमा जो है वो दायर कर दिया है. क्या है इस मुकदमे के चीदा चीदा नुकात, उस पर बात करेंगे प्रोग्राम में आगे चल के. एफ के नियाजी कहते हैं क्या पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप जीत सकता है, कितना अच्छा हो पाकिस्तान वर्ल्ड कप, नहीं नहीं पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतने को तो जीत सकता है थ्योरेटिकली, लेकिन इंडिया में क्या पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीतने दिया जाएगा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Why do you prefer to live in an apartment flat and not in a house? Because I'm not rich enough to buy a house, sir. ईमानदारी की बात है, that is the reason. And कुछ अर्से पहले हमने जिस वक्त हम इस घर में खरीद मूव हुए थे तो उस वक्त डिसाइड यही हुआ था कि यार अब किराए पे नहीं रहना. किराया कुछ समझ में आई नहीं थी चीज़, लेकिन बहरहाल आगे के कुछ पता नहीं है कि क्या होगा सिलसिला, लेकिन किराए वाला एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा नहीं था. तो हमने फिर आई टू मजाने बैंक में होता था तो बैंक का लोन बहुत सस्ता 2% पे लोन मिल जाया करता था, तो वो अच्छा हुआ अच्छे अच्छे जमानों में हमने ये इन्वेस्टमेंट कर ली जो अपना कम अज कम घर हो गया. तो बाकी अपार्टमेंट के रहने के कुछ फवायद हैं, कुछ नुकसान हैं. आप अगर अपार्टमेंट में, जब हम पहली बार अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे 2000 में, तो वो थोड़ा शुरू में मसला हुआ था आपका, है प्राइवेसी के इश्यूज होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सिक्योरिटी की बात हो, पानी वानी आने की बात हो, जनरेटर की बात हो, ये इन चीज़ों से आप जो है ज़रा घर में अपार्टमेंट में रहने से जो है वो थोड़ा सा बच जाते हैं. सो या दैट्स द थिंग. कोई ऐसी खास रीज़न नहीं है उसको प्रेफर करने की. इफ आई फाइंड अ गुड हाउस आई विल फाइंड अ गुड हाउस आई विल मूव देयर, बट आई डोंट हैव विल आई हैव द मनी फॉर दैट. That's the point. Because घर पर खरीदना अच्छे इलाकों में, अब मिडिल क्लास के बस की तो बात रही नहीं है सर. आई मीन लोग प्रॉपर्टियां लेके बैठे हुए हैं हमारे, क्योंकि टैक्सेशन का निज़ाम इतना थका हुआ है, लोग 8-8, 9-9 प्रॉपर्टियां जो है ना वो कपूर भाई लेके बैठे हुए हैं और कहते हैं यार अगर कोई मुझे मेरी प्राइस मिलेगी तो फिर मैं बेचूंगा वरना मैं नहीं बेचूंगा. कपूर भाई ये नहीं सोचते कि यार उसको पैसे को इस पर इस प्रॉपर्टी को थोड़े कम में भी बेच के इस वक्त अगर वो पैसे किसी म्यूचुअल फंड में मनी मार्केट में कहीं रखवा देंगे किसी जगह तो उनको जो है 20-20% रिटर्न मिल सकता है. वो जो एक साल अपना पैसा बचा के रख रहे हैं उस थोड़े से 10-15 लाख रुपए बचाने के आगे ऊपर पैसे अपनी प्रॉपर्टी में लेने के लिए, उससे ज़्यादा जो है वो उनको वहाँ पे मिल सकता है पैसा बैंक में, लेकिन कौन समझाए उनको. तो लोग प्रॉपर्टियाँ लेके बैठे हुए लोग निकाल नहीं रहे, तो इसी वजह से इतना स्लो डाउन होने के बावजूद द प्रॉपर्टी प्राइसेस आर नॉट सीरियसली गोइंग डाउन इन द मेन एरिया. हाँ वो कब्जा कॉलोनी और इन जगहों पे गिरी है बिकॉज जाहिर है वो हमेशा से एक स्पेकुलेटिव मार्केट थी. बहरहाल जी अभी काफी देर हो गई, मैं ब्रेक पे नहीं गया तो ब्रेक पे जाते हैं और फिर उसके बाद वापस आते हैं. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Ooh, that was amazing, guys. बहुत दिनों बाद आज सुना Goo Goo Dolls, Iris. From the movie City of Angels, जितने 90s boys and girls हैं, I'm sure. एक तो ये movie बहुत heart touching किस्म की फिल्म थी और Nicolas Cage जो कि उस जमाने में उनकी एक बहुत एक different सी उनकी एक positioning हुई हुई थी, and he did this movie, very romantic movie with Meg Ryan, और बड़ी खूबसूरत फिल्म थी, बड़ी heart touching movie थी और उसका ये बहुत ही एक evergreen legendary song था जो कि ऑफ कोर्स आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा फॉर श्योर. सो 90s के जितने भी लोग हैं उन्होंने इसको बड़ा इन्जॉय किया. बाजी का मैसेज भी आया, कहती हैं कि क्या बात है इस सॉन्ग की और इस मूवी की. हाँ वैसे ये बात तो है बिल्कुल. रहमान खिलजी साहब वो भी कहते हैं कि भाई उन्होंने तो अच्छा पोस्टर शेयर किया है मूवी का. वेरी गुड वेरी गुड. और सुहेब चौधरी साहब कहते हैं जस्ट वोक अप टू दिस अमेजिंग ट्रैक. वाह आदिल सर भाई, सिटी ऑफ एंजल्स क्या बात है. साथ न्यूजीलैंड से कहते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंगर इन ट्रैक, ये मैंने अभी बता दिया आपको, आयरिस गूगू डॉल्स. और या नाइस, ठीक है जी गुड. अहमद बाम साहब कहते हैं, डिड यू वॉच दिस रील? नहीं, मैंने ये रील नहीं देखी है, मैं जरा इसको देख लेता हूँ, ये क्या है सिलसिला. कहते हैं अदील भाई, आप बुर्ज खलीफा में अपार्टमेंट क्यों नहीं लेते? सर बिल्कुल, मैं अभी भाई बुर्ज खलीफा अभी बस सर अभी ले लेता हूँ, मैं आज अभी पैसे मुझे बताएं, ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाते हैं पैसे, ऑनलाइन परचेजिंग हो जाती है तो मुझे बता दें यार. वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम सो मिडिल क्लास कि मैंने एक बार, मैं अपनी जिंदगी में एक दफ़ा एक ऐसे पाकिस्तानी से मिल चुका हूँ who owns an apartment in Burj Khalifa. Now, आप भी कहेंगे कि यार क्या गरीब आदमी है, वाकई सीरियसली, यानी एक बहुत अमीर आदमी की कोई डॉक्यूमेंट मेरे पास आई थी जिनको मैं बड़ा पर्सनली जानता था, और उनका जो घर का एड्रेस था, उनका नाइकॉप था बेसिकली, वो किसी और मुल्क के सिटीजन थे और उनका वो नाइकॉप था, और उसमें जो एड्रेस लिखा हुआ था वो बुर्ज खलीफा का लिखा था. एंड आई वाज लाइक, मैन सीरियसली यार, क्या बंदे की भी क्या लाइफ होगी. खैर, लेकिन मुझे अंदाजा हुआ कि नहीं, ये चीज़ें भी उनकी लाइफ देख के लगता है कि नहीं, ये चीजें आपको एक हद तक ही खुश कर सकती हैं, लेकिन खैर वो भी एक लर्निंग होती है लाइफ में. लेकिन वाओ, जस्ट इमेजिन. ओके जी, फहीम अली खान साहब क्या कहते हैं, स्ट्रगल बिल्ड्स कैरेक्टर, डोंट ट्राई टू स्किप इट. वेरी नाइस. अच्छा जी, फहीम अली खान कहते हैं, एज पर गूगल सर्च, द आइजक न्यूटन इज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी जीनियस फिजिसिस्ट मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर एंड अल्केमिस्ट, ही इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एवर लिव. तो ये तो फहीम भाई हमें पता है बात. कोई अच्छा, आई थॉट कि आप कोई नई चीज बताना चाह रहे हैं आइजक न्यूटन के हवाले से, कि वो आइजक न्यूटन द ग्रेटेस्ट जीनियस फार्मासिस्ट मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर एंड अल्केमिस्ट इन्वेंटेड समथिंग जो हमें पता नहीं हो. कभी कभार ऐसा होता है ना कि आपके हैरान रहते हैं, अच्छा ये भी इस बंदे ने बनाई थी बात. हो सकता है लिखा हुआ होता है, ही वाज अ बिग फैन इन द 17th सेंचुरी, ही वाज अ बिग फैन ऑफ हैदराबादी बिरयानी, कुछ इस तरह की बात होती है, तो फिर जाहिर है फिर हम वाकई कोई नया फैक्ट पता चलता है. पर न्यूटन वाज अ जीनियस, नो डाउट अबाउट दैट. जाहिर है हमारी तारीख में जिन लोगों का शदीद इन्फ्लुएंस रहा है, दे हैव शेप्ड अप द वे, शेप्ड अप द वर्ल्ड दैट वी लिव इन, सो न्यूटन इज वे अप देयर. ऑलराइट, फरा मुश्ताक कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम, काफी तवील ट्वीट आया इनका. Yesterday my phone dropped on a road and I found it late that I have lost it. Hours later a guy received my call from another number and told his location and returned my cell. Can't thank him enough. He was a tractor driver. Hum ameeron ke dil kahan itne bade hain. Wow yaar, dekhen pehla point to ye hai, Dr. Farah Mushtaq ameer hai. ठीक है, अमीर लोग भी आप अक्सर ये बात मानते नहीं है ना कि हम अमीर हैं, यानी अमीर लोग भी कहते हैं नहीं हमारे पास कहाँ इतना पैसा. हमारे खानदान में बहुत अमीर हैं, और जब मालूम करो उनसे और टेंशन में यार हर वक्त, लेकिन खर्चे जब होते हैं तो आप अंगुश बदंदा रह जाते हैं. यानी आप बड़े दिनों बाद आज ये मैंने लफ्ज़ यूज़ किया, लेकिन चले डॉक्टर फरा ने बोल दिया कि वो अमीर हैं. ठीक है जी, चले ओके. बाकी नहीं यार, वैसे वाकई आजकल के दौर में, हाँ वाकई आजकल के दौर में कहाँ ऐसे लोग होते हैं यार कि वो फोन उनको, बेसिकली स्टोरी आप समझ गए होंगे क्या हुआ, कि वो फोन उनसे कहीं गिर गया. अब ये गिर कैसे गया, ये भी एक सवाल पैदा होता है, लेकिन गिर जाता है, हो जाता है. अक्सर लोग अपनी गोद में रख के गाड़ी में बैठे हुए होते हैं फोन, और उठते हैं और गिर जाता है फोन. वैसे गोद में रखने के चक्कर में मेरी एक फोन की स्क्रीन बिल्कुल क्रैश हो गई थी. ये ना रखा करें गोद में, खासतौर से कुर्ता शलवार जो पहने हुए होते हैं ना, बिकॉज कुर्ता शलवार एक ऐसा ड्रेस इंसानों ने बनाया है, जो हमारे मुसलमानों के खुले खुले ड्रेस होते हैं ना, तो उसमें हमेशा मैं ये बोलता था कि मैं कुर्ता शलवार बहुत कम पहनता हूँ, शायद एक ईद में कभी कोई बहुत स्पेशल ओकेजन हुआ तो पहन लिया. बट आई ऑलवेज से कुर्ता शलवार, रियली यू रियली डोंट नो वेयर योर एग्जिस्टेंस एंड वेयर डज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बिगिन, पता ही नहीं चलता आपको. तो कुर्ता शलवार में कहीं भी कोई मोबाइल गिरा हुआ होता है, लोग गाड़ी से उठते हैं, पुड़क करके मोबाइल जो है वो गिर जाता है, और क्लिक करके उसकी जो है वो स्क्रीन टूट जाती है. सो इनका इसी तरह शायद गलबन मोबाइल गिरा, तो समबडी पिक्ड इट अप एंड शी रियलाइज इट लेटर दैट शी हैड लॉस्ट हर फोन. सो दे कॉल्ड फ्रॉम सम अदर, किसी दूसरे नंबर से उन्होंने फोन किया, वो बंदा ट्रैक्टर ड्राइवर था और उसने ट्रैक्टर चलाने वाला था, और उसने कहा जी फोन बीबी जी मेरे पास है, हाँ जी मैं इतने हूँ जी खब्बे सज्जे पास है, आ जाओ. तो वो आया और ये गई फोन, और उसने वाह क्या जबरदस्त बंदा यार, यानी ये होती है इंटेग्रिटी, बहुत आला. चलें जी, ग्रेट. अभी हमें पढ़ना है ब्रेक की जानिब, लेकिन आप लोग के मैसेजेस अभी भी काफी सारे मौजूद हैं. पीर जहीर साहब को स्पेशली मैं सलाम कह जाता हूं. भाई पीर साहब कहाँ हैं जी, आपका शक्ल नजर आई थी मुझे. जी हाँ, नाइस मॉर्निंग कराची, गुल मुस्तफा, आसिफ साहब, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट, रहीम बलोच, आबिद यासीन, ऑल लिस्टिंग टू द शो, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम, और मिलते हैं आपसे इसके बाद. अच्छा जी, मुनव्वर अली भाई भी कहते हैं कि ईरान और अफगानिस्तान के तनाज़े पर बात करें, इस पे हम बात करें इस ब्रेक के बाद ना, एक छोटा सा गाना सुनते हैं और फिर ईरान और अफगानिस्तान के तनाज़े पे, हमें पिछले हफ्ते बात करनी थी लेकिन हमने किया नहीं, तो उस पे बात करते हैं अभी. ठीक है, डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑल राइट, दैट वाज़ विद तेरा मुखड़ा, मून राइज़. ऑफिशियल म्यूजिक. अच्छा ठीक है, ऑलराइट ठीक है, ग्रेट, दैट वाज अ नाइस सॉन्ग. होप यू गाइस एंजॉयड दैट सनराइज शो विद अदील. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. और प्रोग्राम में अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यू कैन ट्वीट मी विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. ऑलराइट, उस्मान ताहिर का मैसेज आया है, कहते हैं क्रिकेट फैंस डे. अच्छा जी, यस्टरडे फहीम अशरफ विजिटेड आवर वर्कप्लेस. Was a great day for people. Found him a humble person sharing his experiences. That's very nice. Aur Rana Fahim Ashraf, Rana ji, Rana sahab, mashhoor aadmi hai ji, aur acche humble aadmi hai. Aur Pakistani cricketers zyada tar aapko jo hai, main ye pehle bhi shayad zikr kar chuka hu ki Pakistani khiladi zyada tar aapko jo hai wo ye bade humility wale log milenge aur bahut hi humbleness ke sath aapko milenge. Aise bhai chand ek hain cricketers hain unke sath problem hai, lekin generally they are very good. And Fahim of course being from a small town, aur unka bhi zahir ek certain apna mizaj hota hai. Theek hai ji, he's from Phool Nagar by the way, bhai Peeru jisko pehle kaha jata tha. Aur yeah, good. Chale ji, iske alawa Zeeshan Beg ne aaj birthday share kiya hai kiski, hamare saath. 6 June 1943, today is the 88th birthday of former Pakistani cricketer, captain and one of the finest batter Asif Iqbal sahab. 11 टेस्ट सेंचुरीज, 55 ओडीआई एवरेज एंड 68 अपीयरेंसेस फॉर पाकिस्तान. ही स्कोर 3905 रन्स एंड टुक 69 विकेट्स. इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री के जो नफीस तरीन लोग हैं और मुहज़्ज़ब तरीन लोग हैं, उनमें आसिफ इकबाल जो हैं वो एक उनमें शामिल हैं. ज़ाहिर है आपको ये भी पता है दैट ही बिलोंग्स टू अ वेरी नवाबी फैमिली. इनका ताल्लुक जो है वो हैदराबाद स्टेट, यानी जब निज़ाम के ज़माने की जो हैदराबाद था, अंग्रेज़ों के ज़माने में ऑफकोर्स ये पैदा हुआ 1943, तो ब्रिटिश इंडिया में इनकी पैदाइश है. सो ही टर्न्स 80 बाय द वे नाउ. और ये जो है आसिफ इकबाल साहब, इनका मैं कुछ और भी लिंक जो है ना वो डेवलप करना चाह रहा हूँ. आई थिंक इनका सानिया मिर्ज़ा के साथ भी जो है ना, सानिया मिर्ज़ा यू नो इज़ ऑल्सो फ्रॉम हैदराबाद, सो इनका कोई लिंक बनता है उनके साथ. लेकिन बहरहाल जी, पाकिस्तान 1960s की अगर आप बात करें, उस ज़माने में पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया. अब तो नाउ ही इज़ टोटली बेस्ड इन इंग्लैंड एंड ही वॉज वन ऑफ द वेरी फ्यू पाकिस्तानीज हु हैव एक्चुअली कैप्टन देयर काउंटी साइड. एक बहुत तवील इनकी जो है वो एसोसिएशन थी विद द काउंटी कैंट, उनके लिए खेले. अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि मैं एक तो उनके पीटीवी में इंटरव्यू करते हुए एक बार इत्तेफाक इनसे आज से कोई तकरीबन 15 साल पहले बनफसे नफीस मुलाकात उस वक्त भी हुई थी. लेकिन अभी जो समा टीवी में शो करता था तो उसमें आसिफ इकबाल साहब अक्सर हमारे प्रोग्राम में एज एन एक्सपर्ट आया करते थे. और आई वाज क्वाइट सरप्राइज दैट इवन एट दिस एज द सॉर्ट ऑफ नॉलेज दैट ही पोजेसेस ऑफ क्रिकेट, जो इस वक्त मॉडर्न क्रिकेट हो रही है एंड ऑल. और इनकी जो एक बड़ी दिलचस्प बात मुझे लगती थी वो ये लगती थी कि कभी किसी के खिलाफ बात नहीं करते थे, हमेशा बहुत नपी तुली और बहुत ही बैलेंस्ड बात जो है ये अभी भी ये करते हैं. सो बहरहाल गुड गाय विदाउट डाउट आसिफ इकबाल साहब, हैप्पी बर्थडे, टर्न्स 80 टुडे. उबैदुल्लाह अहमद जान, अबे यार ये फ्रांस के वाकये के हवाले से ना हम ना ही बात करें तो बेहतर है यार, समझा करें. यूट्यूब पे कर लेते हैं, यहाँ पे जरा आपको पता है कि किसी दिन गैरी बार्लो का ओपन रोड प्ले. ओए होए जुल्फी, क्या गाना लाए यार, गैरी बार्लो का ओपन रोड. वाओ, माय लाइफ इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी बेयर, आई थॉट द फील आई चेज द पेन. ये गाने के यार लिरिक्स भी याद है मुझे. अच्छा, ये गैरी बार्लो वॉज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश बैंड टेक दैट. अर्ली 90s में, मिड 90s का एक बड़ा मशहूर बैंड आया था ये टेक दैट, और उनका चंद गाने बड़े मशहूर हुए थे. तो उसमें गैरी बार्लो वॉज वन ऑफ द सिंगर्स देयर. रॉबी विलियम्स, या जो बाद में फिर उन्होंने अपना सोलो करियर परसू किया, लेट मी एंटरटेन यू, बड़ा मशहूर गाना गाया था. और उन्होंने कवर भी गाया था जॉर्ज माइकल का फ्रीडम. या सो बड़ा जबरदस्त भाई ये. और यार ये पता है, ये गैरी बार्लो की एल्बम ओपन रोड बाकायदा मुझे याद है, मेरे एक दोस्त स्कूल में होता था तारिक, उससे मैंने बाकायदा ली थी और मैंने उसकी कॉपी मारी थी, घर में रखी थी. और इसकी ओपन रोड बड़ा इसका मशहूर गाना था यार ये इसका. इसके लव वोंट वेट, यस, इसकी तो वीडियो भी आई थी, लव वोंट वेट. ओहो वाह. अच्छा जी, मोहम्मद वसीम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, हैज डिजिटल सेंसस कंप्लीटेड इन सिंध पाकिस्तान, वो कोई फाइनल नंबर. हाँ जी, डिजिटल सेंसस तो कंप्लीट हो गई है, आई थिंक फाइनल नंबर्स कंपाइल हो रहे हैं. लेकिन कोई मैंने सुना है हम पाकिस्तानी को 24-25 करोड़ के करीब जो है वो हो चुके हैं, अब तो लाशें काफी हो गई हैं. यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, शहजाद नया साहब, बाय द वे एमक्यूएम कह चुकी है कि हमें ये कबूल नहीं है. हम कल मैं सुन रहा था मुस्तफा कमाल साहब बहुत गुस्से में थे, परसों कह रहे थे हमें ये कबूल नहीं है नंबर, नहीं कुछ करना नहीं है, तकरीरें करनी है. अब्दुल अली मोगल साहब कहते हैं little hot and pleasant morning after school holidays. Seniors may have good times to share more chat. That is very nice, sir. Enjoy your time. Sanjay कहते हैं, some people feel uncomfortable when TV volume is not divisible by 2. नहीं, अच्छा, यानी अगर TV volume है, अगर वो it's not divisible by 2, it makes people uncomfortable. That's a very interesting fact. अच्छा, रजाक साहब कहते हैं, अब्दुल रजाक साहब, I am among those people. Wow, this is interesting actually. If it is not divisible by 2. चलें जरा बात करते हैं ईरान और अफगानिस्तान के हवाले से, और ये जो हमें बात करनी थी पहले से. देखिए भाई, इनके दरमियान जो तनाज़ा है वो पानी का तनाज़ा है, ठीक है, और ये कोई नया तनाज़ा नहीं है इन दोनों मुल्कों के दरमियान. हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि अफगानिस्तान में तालिबान की एंट्री के बाद, री एंट्री के बाद, ये मामला ज़रा थोड़े से बढ़ गए हैं. अच्छा, ये दरिया जिसके हवाले से ये पंगा चल रहा है, उसका नाम दरियाए हिलमंद है. हिलमंद आपको पता है कि अफगानिस्तान में एक सूबा भी है, और एक काफ़ी बड़ा सूबा है, और शायद अगर मैं गलती पढ़ना हूँ तो रकबे के लिहाज से अफगानिस्तान के सबसे बड़े सूबे में से एक है. अफगानिस्तान में बहुत सारे सूबे हैं, इतना बड़ा मुल्क नहीं है, पॉपुलेशन भी इतनी नहीं है, हमें देखें चार से आगे बढ़ने को तैयार नहीं है. कसम खा के गए हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा पाकिस्तान में चार सूबे रहेंगे. कोई नारा तो नहीं बना, लेकिन ठीक है. तो अफगानिस्तान में लेकिन छोटे छोटे बहुत सारे सूबे, बट हिलमंद इज अ रिलेटिवली बिग प्रोविंस देयर, और वहां से एक दरिया जो है ये बरामद होता है जिसका नाम हिलमंद रिवर है. अच्छा, ये जो एरिया है जो कि हिलमंद का एरिया है, अब पाकिस्तान जो बलूचिस्तान के साथ जो सरहद लगती है अफगानिस्तान की और ईरान की, ईरान का जो सूबा है वो सिस्तान व बलूचिस्तान है. सिस्तान व बलूचिस्तान उनका पाकिस्तान की बॉर्डर के साथ लगा हुआ एक सूबा है, जहाँ पे ज़ाहिर है बलोच बोलने वाले लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में उधर रहते हैं, और उसका मिजाज जो है उस सूबे का वो पूरे बाय द वे ईरान से काफ़ी डिफरेंट है बहुत सारी वजूहात की बिना पर. तो सिस्तान व बलूचिस्तान में अफगानिस्तान से आगाज़ होता है हिलमंद से, और वहाँ से होता हुआ ये रिवर जो है ये ईरान की बॉर्डर क्रॉस करता हुआ इट रीचेस ईरान का सिस्तान व बलूचिस्तान प्रोविंस, और वहाँ पे किसी लेक वगैरह में जाके उसको ये भरता है, पानी भरता है वहाँ पे जाके. अच्छा, इसकी पानी के हवाले से, इसकी पानी की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले, देखिए जब भी पानी किसी एक मुल्क की बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरे मुल्क में जाता है तो फिर मसले मसाइल तो होते हैं, ठीक है जी. आपको अपना हमारा पता है जी, इंडस बेसन ट्रीटी है, तमाम तर इंडिया पाकिस्तान के मसाइल और पंगों के बावजूद ये ट्रीटी जो है ये रही है अपनी जगह पर, मजबूत रही है, ये नहीं मूव हुई है. इंडिया धमकी भी देता है, अक्सर हम सुनते रहते हैं इंडिया से धमकी आ रही है, और हो सकता है बहुत जल्दी वो कुछ कर भी दें. हमारा जो हाल है हमारे मुल्क का, हम तो खैर अपने लिए खड़े भी अब पता नहीं हो सकते हैं या नहीं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान अफगानिस्तान पे आते हैं, पाकिस्तान को टेंशन नहीं लेते हैं पाकिस्तान की यार. तो अफगानिस्तान पे ईरान इल्ज़ाम लगाता रहता है, इनके दरमियान आपस में कुछ काफ़ी अर्से पहले एक मुहिदा हुआ था जिसमें उन्होंने ये डिसाइड किया था कि ईरान एट एनी गिवन टाइम इट पर्टिकुलर क्यूसेक्स पानी जो है वो छोड़ेगा कि ईरान अपने डैम भर सके, अपनी लेक भर सके, और वहाँ पर अपने एग्रीकल्चर वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सके. लेकिन ईरान जो है वो अफगानिस्तान पे पिछले कुछ सालों से नाउ दिस हैज हैपेंड इवन बिफोर तालिबान टुक ओवर, अशरफ गनी के टाइम पे भी इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो इसमें कुछ आपस में तख जुमलों का तबादला हुआ था, बिकॉज ईरान बार बार ये कह जा रहा है कि आप पानी नहीं छोड़ रहे जितना आपको छोड़ना चाहिए था. अफगानिस्तान ये कहता है कि यार जब उस दरिया में इतना पानी नहीं है तो मैं तुम्हें छोड़ू, मैं कहाँ से छोड़ू तुम्हें, मुझे अपनी भी तो लोगों का पेट भरना है, मुझे अपनी भी तो एग्रीकल्चर के लिए सप्लाई करना है. अब जब बारिशें नहीं हो रही, पानी का सप्लाई नहीं है, खुशसाली है, क्या करें, मैं कहाँ से पानी दूँ आपको. तो इस मामले पर ईरान का ये कहना है कि नहीं, वो उन्होंने जी हम उन्होंने तो बल्कि मैं खास सुना है कि अफगानिस्तान ने कहा भी है कि इंडिपेंडेंट इंस्पेक्टर्स आएँ, या पता नहीं ईरान ने दरख्वास्त की है कि हमें इंस्पेक्टर्स भेजें और हम जाके जगह इंस्पेक्ट करें. तालिबान जब हुकूमत आई तो उन्होंने कहा कि वो उस मुहिदे का पास करेंगे जो इससे पहले अफगानिस्तान की हुकूमतें करके आई हैं ईरान के साथ. उन्होंने कहा जो मुहिदा हुआ है हिलमंद रिवर के वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, हम उसका पास करेंगे, लेकिन अगर जब हमारे पास पानी नहीं है तो हम कहाँ से आपको दें. तालिबान का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू था और यही कहना था. अच्छा, इसमें क्या हुआ कि रिसेंटली जो ईरान के सदर हैं वो पहुंच गए थे उस जगह पर, उनकी बॉर्डर वाली जगह पे, और वो बॉर्डर वाली जगह पे जाके जहाँ से वो दरिया जो है अफगानिस्तान से ईरान में दाखिल हो रहा होता है वहाँ पे जाके उन्होंने कुछ तल्ख बातें की, सख्त बातें की, और उस पर ज़ाहिर है काफ़ी सख्त जवाब जो है वो अफगानिस्तान की जानिब से, तालिबान की जानिब से जो है आया, और उन्होंने अपनी फोर्सेज जो हैं वो बॉर्डर पर भेज दी. वहाँ पर ईरान की फोर्सेज तो हर वक्त ही मौजूद होती होंगी. तो इन दोनों के दरमियान देखें ये स्टेटमेंट्स कितनी ख़तरनाक होती हैं कि उसके बाद वो एक शॉट भी फायर हो जाए तो फिर लोग मर जाते हैं. तो आई थिंक देयर वाज़ अ क्लैश बिटवीन द टू फोर्सेस, ईरानियन आर्मी और यहाँ पे तालिबान अफगान फौजी जो थे, उन्होंने आपस में क्लैशेस हुए और उसमें दो तीन लोग मर भी गए. ये पानी का पंगा है. आई होप दैट क्लैरिफाइज माई फ्रेंड. अभी हम बॉर्डर ब्रेक की जाने मिलेंगे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वाह जी वाह खान साहब, क्या बात है नुसरत अली खान साहब की आवाज में. दिस इज नॉट अ मच टॉक्ड अबाउट सॉन्ग, बहुत ज्यादा सुनने में मिलता नहीं है, लेकिन हम तो बहुत सुना करते थे गाना यार. इस जमाने के एक दो और गाने जो है ना वो मुझे बड़े याद हैं यार. और मैं बल्कि कोई और गाना सोच रहा था, वो भी चलाएंगे, जल्दी चलाएंगे, मिल जाएगा, वो है हमारी लाइब्रेरी में. लेकिन मजा आया यार ये गाना सुन के. तो आज गाने वैसे अच्छे चलते हैं मेरे प्रोग्राम में, पता है मुझे, आपको तारीफ करने की जरूरत नहीं है माशाल्लाह. लेकिन फिर भी अच्छा जी. नवीद मुनव्वर साहब कहते हैं मजा आ गया, कॉलेज के दिनों में बहुत सुना ये गाना, नुसरत अली खान दी ग्रेट, इसमें कोई शक नहीं सर, बिल्कुल. सलमान खलील भी कहते हैं क्या याद दिला दिया, बिल्कुल जी. शाहीन ताहिर कहती है ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय उस्ताद नुसरत अली खान, मेरा गम और मेरी हर खुशी तुमसे है. और इसके अलावा जो है वो चॉइस साहब कहते हैं गूगू डॉल्स देन आतिफ एंड नाउ उस्ताद मोहतरम, आज की प्लेलिस्ट भी लगता है आपने खुद ही बनाई है. वैसे ये तीनों गाने मैंने खुद ही चलाए हैं, लेकिन द पॉइंट इज दैट गाने अच्छे ही चलते हैं प्रोग्राम में यार. अब मैं क्या बताऊं, अब मैं अपनी तारीफें कैसे करूं इतनी सारी. चलें जी आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का कहना है कि सियासी मसाइल का हल मुजाकरात है, उम्मीद है सियासी जमातों में तकसीम के खात्मे और पूरे मुल्क में एक तारीख पर इंतखाबात के लिए इत्तेफाक हो जाएगा. तहरीक इंसाफ और हुकूमती कमेटियों ने रिपोर्ट जमा कराई, सियासी मसाइल को मुजाकरात से हल करने की कोशिश काबिले सताइश है. इंतखाबात केस गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए मुलतवी, तहरीरी हुकूमत मतलब तहरीरी हुकूमत उसका जारी हो गया, केस तो पहले आप जानते हैं मुलतवी हो ही गया था. बहरहाल जी क्या कहते हैं जी, माशी मामलात में हमारी महारत नहीं कि इलेक्ट्रिक की निजकारी के मामले पर मुदाखलत नहीं करेंगे, हाईकोर्ट से रजू किया जाए. पार्लियामेंट ने बराह रास्त इख्तियार समात पर दो कवानीन बनाए हैं कि इलेक्ट्रिक की निजकारी को 18 साल हो गए हैं, पुराने मुकदमात इसलिए मुकर्रर कर रहे हैं कि देख सकें कोई लाइव इशू तो नहीं है, ये जस्टिस बंदियाल का कहना है. आगे बढ़ते हैं जी. असद उमर कहते हैं मेरा क्या ताल्लुक जहांगीर तरीन से. चलें जी, तो आने वाले दिनों में पता चलेगा. बिकॉज मार्केट में खबरें काफी गर्म है कि जो पीटीआई का माल गनीमत है, आपको पता है कि इस वक्त उसको लूटने के लिए काफी सारे लोग बैठे हुए इधर उधर बैठे हुए हैं, अपने शहरों से बाहर गए हुए हैं कि भाई किसी तरह जो भी हाथ लगता है पीटीआई के जो है वो हाथ उठा लें, हाथ ले लें. लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यही आ रही है, पीटीआई एक इस लिहाज से बड़ी यूनिक पार्टी है कि वोट बैंक इनका है नहीं. यस देर आर इलेक्टेबल्स, इसमें कोई शक नहीं है, देर आर इलेक्टेबल्स, लेकिन लेट्स सी खैर क्या होता है. ओके इसके हवाले से. और यार अभी शक्ल नजर आई मुझे निजार मोमिनानी साहब की, भाई आप मोटरवे पर ड्राइव कर रहे हैं, सॉरी आपका मैसेज मैंने पढ़ा नहीं था. भाई गुड मॉर्निंग टू यू एंड हैव अ सेफ डे, सेफ जर्नी एज वेल. अताउर रहमान साहब साहब की तस्वीर आई, कहते हैं जी हॉट एंड ह्यूमिड मॉर्निंग. बिल्कुल मैं इससे पहले भूल जाता, मैंने कहा आप लोगों को मैं जरा एक्नॉलेज कर लूं. शहबाज शरीफ साहब ने कौम को चेतावनी दे दी है, कहते हैं IMF के साथ इसी माह मुआहदे की उम्मीद, मुजाकरात नाकाम हुए तो कमर कस लें. अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क माशी तबाही इंतशार फैलाने वाले अनासिर से पाक हुआ. आप ये देखें ये क्या बातें कर रहे हैं यार, यानी खुदा की कसम. लाइक अच्छा आप देखें कि मैं यार ये मजाक नहीं करता जब मैं कहता हूँ कि PMLN नवाज ग्रुप और PMLN शहबाज ग्रुप, ये पाकिस्तान की बहुत बेसिक बातों से जो है ना वो डिसएग्री करते हैं. और बार बार मैं एक और बात भी बोलता हूँ, दैट राइट नाउ द एलिफेंट इन द रूम इन पाकिस्तान इज द इकोनॉमी एंड हार्डली एनीवन इज टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी. यानी इस सारा बदकिस्मती इस मुल्क की क्या होगी कि इसका फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर एक पेज पर नहीं है इकोनॉमिक पॉलिसीज के हवाले से. डॉक्टर आयशा गौस पाशा को सुनते हैं तो वो कहती हैं जी IMF से अभी भी हम पर उम्मीद हैं मुआहदा हो जाएगा. दूसरी जानब अगर हम इन चाचा जी को सुनते हैं डार साहब को, तो वो तो IMF को बिल्कुल जैसे कहते हैं कि अपनी जिंदगी से जो है ना वो निकाल चुके हैं. सो पता नहीं क्या चल रहा है. बिलावल ने मुर्तुजा वहाब को कराची और काशिफ शोरों को हैदराबाद के लिए मेयर नामजद कर दिया. बाय द वे मुर्तुजा वहाब इलेक्शन जीते नहीं है, लेकिन बस उनको नामजद किया गया है यहाँ से, और बाकी सारे नामजदियां इन्होंने कर ली हैं. और अब देखते यही हैं कि मिड ऑफ जून में ये इलेक्शंस होने हैं, और जाहिर आपको पता है कि पीपल्स पार्टी की मैन्यूवरिंग एंड ऑल लग यही रहा है कि वो कामयाब हो जाएंगे कराची में अपना मेयर लाने के लिए. आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है. तेल में की पैदावार में कमी, आलमी कीमतों में इजाफा. अच्छा इजाफा होने के बाद थोड़ा सा फिर कम हुआ है. और क्या खबर है भाई. इस्लामाबाद हाई कोर्ट शहरयार आफरीदी और अहलिया की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी गई. कोई मसला नहीं है, कानूनी करार दे देंगे उसको. अभी मरियम नवाज कहती है नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वाली जमात किरची हो गई, अकेला ही काफी हूँ कहने वाला आज अकेला बैठा रो रहा है. मैं तो कहता हूँ बेहतरीन टाइम में इलेक्शन करवा दें यार. मरियम उस बल्दियाती रुक जाते हैं यहाँ पे. चले बिकॉज टाइम चेक कर, कमर्शियल ब्रेक का हो गया है वक्त. मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. और सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि हम बात करते हैं जरा खेलों के हवाले से. एशिया कप पे तो इस वक्त काफी खामोशी सी चल रही है, लेकिन यार T20 वर्ल्ड कप के हवाले से कल बड़ी अजीब सी खबर सुनने को मिली है. और हम कल ही इत्तेफाक से बात कर रहे हैं जब डेव वार्नर का जिक्र कर रहे थे कि वार्नर ने कहा है कि जी वो अपनी T20 वर्ल्ड कप में आके जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर देगा, उसके बाद उसका करियर जो है वो खत्म हो जाएगा. बट ये तो T20 वर्ल्ड कप की लोकेशन चेंज होने की बात हो रही है, बिकॉज आपको पता है कि T20 वर्ल्ड कप अगला जो होना है वो मुश्तरका तौर से वेस्ट इंडीज और रियासत हाय मुत्तहदा अमरीका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को मुश्तरका तौर से उसका जो है इनेकाद करना था, उसकी मेज़बानी करनी थी. लेकिन ICC अमरीका के हवाले से इन पर्टिकुलर वहाँ पे जो तैयारियाँ हैं, वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं, उससे इस वक्त इतना मुतमईन नहीं है. और अमरीकी सरजमीन पर इस वक्त जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ICC ने नामुनासिब करार दे दिया है. कहते ये हैं कि जी तैयारियाँ मुकम्मल ना होने के सबब ICC अपने ऑप्शंस पर नजरसानी के लिए मजबूर है. इंग्लैंड को 2030 में T20 वर्ल्ड कप होस्ट करना है, लेकिन हो सकता है कि उनसे ये पूरा मामला प्रीपोन करवा दिया जाए, वक्त से पहले उनसे बोला जाए कि आप इसका इनेकाद करें. एंड अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज वुड हैव टू वेट फॉर दैट टाइम. सो आई नो सम पीपल इन द अमेरिकन क्रिकेट बोर्ड, वो काफ़ी एक्साइटेड थे इस टूर्नामेंट के हवाले से, लेकिन अगर तैयारियां नहीं, अभी भी याद रहे तकरीबन एक साल है इसके आगाज़ में, और अगर इसमें देखते हैं आई एम श्योर थोड़ा सा टाइम देंगे. इट कुड बी बैड फॉर द वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड इज फॉर श्योर. आई मीन ज़ाहिर है इनकी मुश्तरका बिट थी, मुश्तरका तौर से इनको जो है ये किया गया था, लेकिन क्या वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड या जो कोई याद रहे 2010 में T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद अकेले कर चुका है, क्या वो इसकी अकेले मेज़बानी की बात करेगा? वेल दैट रिमेंस टू बी सीन. लेकिन बहरहाल ऐसा लग रहा है कि ये गुफ्तगू इस हवाले से अब होना शुरू हो गई है. ओके, वहाब रियाज खेल में एक बार फिर वापसी के लिए पर तोलने लगे. मुशीर खेल पंजाब ने PCB से तरबियती कैंप में बुलाने की दरख्वास्त दायर कर दी है. यार खुदा की कसम, 2020 में आखिरी इंटरनेशनल मैच खेलने वाला. आपको पता है वहाब रियाज की जो थोड़ी बहुत लेगेसी थी वो तो अभी जो कर रहे हैं उसकी वजह से उनकी वो खत्म हो गई. मैं तो सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि ये कभी पब्लिक में आएंगे, कभी ना कभी तो ये खत्म होगा ना, ये केयर टेकर गवर्नमेंट कब तक रहेगी? जाहिर है कभी ना कभी तो आना है, और कभी ना कभी तो वहाब रियाज पब्लिक में आएंगे, क्या होगा फिर? मैं तो ये सोच के हैरान रह रहा हूँ. लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है, मिकी आर्दर पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर काम के बोझ का दिफा करने लगे. शाहीन शाह अफरीदी का 10 रोज में 28 ओवर कराने का वर्कलोड संभाला जा सकता है. जी हाँ, शाहीन शाह अफरीदी आप जानते हैं कि इस वक्त वाइटैलिटी ब्लास्ट में जो है वो खेल रहे हैं, और नॉटिंगम शायर के लिए 7 मैचेस के दौरान उन्होंने जो है वो 10 विकेटें भी हासिल की हैं. और बेसिकली उनका कहना ये था कि मिकी का ये कहना है कि यार इतनी थोड़ी क्रिकेट खेल के जो 28 ओवर उसने आके फेंके हैं, तो उसका मतलब क्या ये है कि उसका वर्कलोड जो है वो उसका बढ़ गया है. लेकिन खैर चलें जी, मिकी फिलहाल डिफेंड, और अच्छी बात है मिकी खुद वहाँ पर मौजूद हैं और ज़ाहिर है इन सब के खिलाड़ियों की जो है वो परफॉर्मेंसेस देख भी रहे हैं. वाइटैलिटी ब्लास्ट में आज जो मैचेस होने वाले हैं बाय द वे, उसमें मिडिलसेक्स वर्सेस हैम्पशायर, डारहम वर्सेस नॉटिंगहमशायर, लेस्टर और यॉर्कशायर आपस में आमने सामने. दैट मीन शान मसूद की टीम यॉर्कशायर लेस्टरशायर से मुकाबला कर रही होगी. आप ये भी जानते हैं कि लेस्टर से जो हैं वो नसीम शाह खेल रहे हैं, और देखते हैं क्योंकि नसीम शाह को नवीन उल हक की जगह जो है वो ड्राफ्ट इन किया गया था. नवीन आई थिंक शुड बी बैक नाउ इन, अब तो IPL ख़त्म हुए हुए भी अरसा हो गया. सो नवीन पता नहीं अब ये नसीम मैच खेल रहे होंगे या नहीं खेल रहे होंगे. लेकिन खैर चलें जी, ये हो गई बात. इसके अलावा शादाब की टीम भी आज एक्शन में है, और शादाब की परफॉर्मेंस जो है ना वो इतनी अच्छी आपने नोट किया होगा कि वो खास चल रही नहीं है, और विच इज़ नॉट गुड एक्चुअली. लेकिन चलें जी, लेट्स, आई डोंट नो वेदर ही विल बी प्लेइंग और नॉट, बट लेट्स विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट. चलें जी ठीक, ये हो गई बात कुछ क्रिकेट के हवाले से. इसके अलावा फुटबॉल, मुईन अली का भी जिक्र करते हैं जी. मुईन अली बिल्कुल, आपको पता है कि एशेस का आगाज होने वाला है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इख्तिताम के बाद एशेस का जो है वो आगाज होगा. और मैंने कल प्रोग्राम में आपको ये बताया था कि इंग्लैंड के लेग स्पिनर जो जैक लीच हैं वो अवेलेबल नहीं है, इंजरी की वजह से जो है वो जैक लीच अब जो है वो नहीं खेल पाएंगे. और कह ये रहे हैं, कहा ये जा रहा है कि मुईन अली जो कि टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके थे 2021 में, वो उनको अप्रोच किया जा रहा है एक बार फिर से कि वो आके यहाँ पे क्रिकेट खेले. मुझे लगता है कि मुईन में अभी भी, मुईन को शौक है मुझे लगता है टेस्ट क्रिकेट खेलने का, इवन दो ही हैज रिटायर्ड नाउ, बिकॉज पाकिस्तान के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज इंग्लैंड की होने वाली थी उसमें भी ये बातें हो रही थी कि मुईन अली वुड टेक हिज रिटायरमेंट बैक और एक बार फिर से आके वो इंग्लैंड के लिए खेलेंगे, लेकिन फिर बाद में कोई बात बनी नहीं एंड देन ही ऑफ कोर्स डिड नॉट प्ले इन दैट टेस्ट सीरीज. नाउ एशेस के लिए उनको अप्रोच किया जा रहा है और लेट्स सी क्या होता है, वेदर ही विल कम बैक फ्रॉम हिज रिटायरमेंट और जैक लीच की जगह जो है वो आके बॉलिंग कर रहे होंगे. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. और ये बात क्रिकेट की हो गई. फुटबॉल में चलें जी, टॉटनम ने जो है वो एक नए उनके जो हैं वो मैनेजर आ गए हैं. टॉटनम हैड अ प्रीटी बैड सीजन और ख़ासतौर से जहाँ तक मैनेजमेंट का ताल्लुक है वो ठीक उनका जो कोई मैनेजमेंट जो है वो सेट हो नहीं पा रही है. और सेल्टिक के जो बॉस हैं अभी इनके नाम की प्रैक्टिस करेंगे तो फिर इनका नाम जो है ना वो हमें इंशाल्लाह याद हो जाएगा बहुत जल्दी. लेकिन मेरा सिस्टम क्योंकि हैंग हो गया इसलिए मैं इसको अभी रिफ्रेश कर नहीं पा रहा हूँ. लेकिन सो हुआ ये सीन है कि टॉटनम हैड अ वेरी बैड सीजन दिस ईयर और उनके मैनेजर वगैरह भी चेंज होते रहे, ये सब सिलसिला रहा. बट नाउ दे हैव गॉट अ न्यू मैनेजर एंड या अच्छा ये दो क्लब्स के हो गए हैं जी मैनेजर की अगर हम बात करें. चेल्सी हैज अपॉइंटेड अ न्यू मैनेजर नाउ. आई थिंक ही हैज बीन अपॉइंटेड, इट हैज बीन अनाउंस नाउ दैट ही इज गोइंग टू बी द न्यू मैनेजर मॉरिसियो पोचिनो जो कि अर्जेंटीना से जिनका ताल्लुक है. टॉटनम हॉटस्पर्स के लिए बहुत अरसे उन्होंने जो है वो कोचिंग करते रहे हैं. और ये जो साहब हैं जो ऑस्ट्रेलियन, ओ माय गॉड ही इज एन ऑस्ट्रेलियन, मुझे नहीं पता था, एंजेलोस कोस्टाचोग्लू, ये नाम से तो कुछ टर्किश लग रहा था कुछ ग्रीक श्रीक टाइप में लग रहा था. आपको पता ना कि ये ऑस्ट्रेलिया में जो है वो ग्रीक नजाद लोगों की बहुत बड़ी तादाद में जो है वो उनकी आबादी रहती है. उनके ज़माने में एक फुटबॉल एक टेनिस प्लेयर भी हुआ करता था, फिलिपोसिस नाम था उसका शायद अगर याद हो आपको, वो भी ग्रीक नस्ल का जो है वो हुआ करता था और एक इनका क्रिकेटर भी हुआ करता था. बट बहरहाल चलें जी. ऑलराइट ये हो गया सिलसिला. अबे हाँ ये कोई ग्रीक लोअर लीग कहीं से आया ही है. चले पढ़ेंगे इसके बारे में रिसर्च करेंगे. ठीक है चलें भाई, गुड हो गया, ये हो गई खेलों की बात. और क्या सीन है अभी हम देख लेते जल्दी से कोई मैसेज, बिकॉज हमें बस अब ब्रेक की जानिब जो है वो बढ़ना है. और ब्रेक से वापस आके ऐसा करते हैं कि आप लोगों के मैसेजेस जो हैं वो हम शामिल करेंगे. अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यू गॉट एनीथिंग गुड टू शेयर विद अस, यू कैन ट्वीट मी विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. और माशाल्लाह जी चीचा वतनी और मुल्तान से मेरे पास तस्वीरें और वीडियोज आ रही हैं. और भाई जून के महीने में क्या जबरदस्त मौसम है. और जून ही वो महीना था जब मैं जिंदगी में पहली बार मुल्तान गया था. तो आप सोच सकते हैं कि जून के महीने में कोई मुल्तान जाए तो उस शहर का किसी के लिए क्या इंप्रेशन जो है वो बना होगा. लेकिन इस वक्त जून के पहले हफ्ते में मुल्तान में इस वक्त जो वहाब जैदी साहब ने जो इस वक्त हमें वीडियो भेजी है, इस वक्त ज़बरदस्त बादल छाए हुए हैं और बेहतरीन हवा चल रही है. और इनके बरामदे में जो है वो कुछ मुर्गियां भी घूमती हुई मुझे नज़र आ रही हैं और वो भी मुझे लग रहा है मौसम की वजह से मस्त हैं बिल्कुल. लेकिन खैर चलें जी, Great scenes. Milte hain break ke baad. Don't go anywhere and keep listening. So that was Go, Abdullah Siddiqui and Atif. And what a song, you guys know. Yaar, aap logo ko to waisi pata hai Atif ka main kitna bada bhakt hoon. Aur us pe phir Abdullah ka ye composition and all, it was so much fun. Ali Haider Gilani sahab kehte hain smoky song. All right, theek ho gaya, good hai. Aur kaun bhai? Imran Khan kehte hain this song could be PTI's anthem in the current situation. अच्छा जी चलें जी, ठीक हो गया. और क्या सीन है? और ये सीन है कि क्या मौसम है आज चीचा वतनी में. ओहो हो, हाफिज इमरान साहब चीचा वतनी का खूबसूरत मौसम, यानी सेंट्रल पंजाब में सीन ऑन चल रहा है. अच्छा भाई जीशान बेग साहब खान हमारे खास आदमी हैं बहुत, आपको पता है कि कोई भी हमें प्रॉम्प्ट रिसर्च करानी हो फौरन सर्च करके हमें भेज देते हैं. आसिफ इकबाल साहब की हम बात कर रहे थे, साबिक टेस्ट क्रिकेटर आसिफ इकबाल साहब, उनकी आज माशाल्लाह 80वीं बर्थडे है. ही टर्न्स 80 टुडे. आसिफ इकबाल इज द अंकल ऑफ इंडियन टेनिस स्टार सानिया मिर्जा. बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड थ्रू गुलाम अहमद, द फॉर्मर कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम. गुलाम अहमद मदर इन लॉ एंड सानिया मिर्जाज फादर्स मदर वर बोथ सिस्टर्स. अच्छा तो गुलाम अहमद और आसिफ इकबाल का क्या लिंक हुआ? थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन हो गई सर, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है सर, चेक करते हैं. बट सानिया मिर्जा से कोई है रिश्ता है, दोनों हैदराबाद से ज़रा इनका ताल्लुक है और ये है सीन. ओके जी, और क्या सीन है? अशफाक जुंजवा साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग, अ चेंज आई हैव ऑब्जर्व्ड इज दैट द प्लेथोरा ऑफ पॉलिटिकल मैसेजेस आर रिड्यूस इन द लास्ट फ्यू वीक. इट मे नॉट बी बाय चॉइस बट गुड वन, हैज इट हैज शिफ्टेड योर फोकस टू जनरल नॉलेज एंड इंटरनेशनल अफेयर्स व्हिच यूज्ड टू बी द हॉलमार्क ऑफ योर शो. चलें जी बिल्कुल सर, नहीं, दिस इज डिलिबरेट, दिस इज डिलिबरेट, और मैं जानबूझ के जरा सियासत को कम डिस्कस कर रहा हूँ. नासिर हुसैन साहब कहते हैं, गुड मॉर्निंग, ड्रॉइंग मेड बाय माय सन सुहेब एंड डॉटर हानिया रिस्पेक्टिवली ऑन ओशन प्लास्टिक पोल्यूशन एज माइक्रो प्लास्टिक्स ईटन बाय फिश बिकम पार्ट ऑफ फूड चेन एंड अफेक्ट ह्यूमंस अदर देन डायरेक्टली अफेक्टिंग द मरीन लाइफ. वेरी वेल डन टू द किड्स. और उस दिन हम प्रोग्राम में भी इत्तेफाक से नासिर साहब आपने सुना हम इन माइक्रो प्लास्टिक के हवाले से बात कर रहे थे. मुबीन अहमद खान कहते हैं, NFK सॉन्ग मेड माई डे, बहुत खूबसूरत गाना, मेरा गम और खुशी, मेरा गम और मेरी हर खुशी तुमसे. आज सुबह हमने चलाया ये गाना, अगर आपने नहीं सुना तो आपने मिस कर दिया, यूट्यूब पे देख लीजिएगा. इसके अलावा सैयद कलीम जाफरी कहते हैं, गुड डे टू एवरीवन, बैंक अल हबीब लिमिटेड, बिल्कुल. माय फ्रेंड अथर इज आल्सो सेइंग सलाम, पाकिस्तान, यू हैव नॉट प्लेड ए नैयर सिंस अ लॉन्ग टाइम, प्लीज डू प्ले. ए नैयर साहब, लॉन्ग टाइम नहीं, ए नैयर साहब मुझे पता नहीं, याद भी आ रहा है कि मैंने कभी वो चलाया भी है या नहीं, लेकिन बिल्कुल जी, मैं तो जला ऐसा जीवन भर, क्या कोई दीप जला होगा. ए नैयर साहब क्या सिंगर थे यार, व्हाट अ सॉन्ग. सादात कहते हैं, रिमाइंड्स मी ऑफ माय जिम नाउअडेज लिसनिंग देयर, ऑलराइट दैट्स कूल. एमी अली कहते हैं, भाई जिस हिसाब से पाकिस्तान में आए दिन झालाबारी हो रही है, मुझे लग रहा है फरिश्ते पाकिस्तान में कंकरियां मार रहे हैं. वैसे यार, वैसे मैं बहुत हैरान हूँ ये झालाबारी वाले सीन की वजह से. यानी यार हर जगह झालाबारी, यानी बैरिया टाउन में कब्जा कॉलोनी बार झालाबारी चल रही है वहां पे यार. यानी इतने बचपन में बड़ा रेयर इंसिडेंट हुआ करता था, यानी इतनी झालाबारी होती थी कि हमें तो इतनी कम होती थी झालाबारी कि हमें तो बोलना भी नहीं आता था. इसको बोलते क्या झालाबारी, कौन सी बारी, लेकिन झालाबारी इतनी हो रही है हर जगह अपनी सिंध में, कहाँ जी मीरपुर साकड़ों में झालाबारी हो रही है. ये अच्छी नहीं है, वेदर के लिहाज से खतरनाक चीज़ होती है काफ़ी. बट इसका आपको पता चला है जिक्र, इट हैज गॉट टू डू विद द अर्थ हीटिंग अप एज वेल. सो अल्लाह खैर करे यार. के लिए चलते हैं आपको ब्रेक की जाने मिलेंगे, इसके बाद डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. जुनैद भाई की आवाज आपने सुनी, होने को है बरसों के बाद एक मुलाकात. वैसे मुझे याद आता है कि ये गाना जो है ना, वो एक इट फीचर्ड इन वन ऑफ द टेलको कंपनीज एड एज वेल. एक जमाने में जुनैद भाई कॉन्सर्ट पे जा रहे थे, कॉन्सर्ट में लेट हो गए थे और उन्होंने जो है वो फोन मिलाया और वहां से उन्होंने जो है वो बातचीत की. सो क्या बात है, जबरदस्त. चलें जी, और ये सीन है, और ये सीन है, जल्दी से हम बात करते हैं जरा थोड़ी सी. हाँ, एप्पल के हवाले से, थोड़ी सी नहीं, एप्पल के हवाले से हम बात करते हैं. भाई एप्पल ने फाइनली एक नई प्रोडक्ट कैटेगरी में जो है वो अब कदम रख दिया है. नाउ दिस कैटेगरी इज नथिंग न्यू. वी नो दैट द कैटेगरी, बेसिकली कैटेगरी इज द ऑगमेंटेड रियलिटी हेडसेट. ठीक है, सो द कैटेगरी एग्जिस्टेड, ये पहले से जो है ये मौजूद हुआ करती थी, कोई नई चीज ये लेकर नहीं आए मार्केट में. लेकिन नाउ दैट एप्पल इज देयर इन दिस बिजनेस, इट सजेस्ट दैट एप्पल का ये ख्याल है कि इस प्रोडक्ट का एक फ्यूचर है. बिकॉज देखिए, व्हाट कुड बी द थॉट प्रोसेस गोइंग बिहाइंड दिस. मेरे ख्याल से जो थॉट प्रोसेस होगा एप्पल का, वो ये होगा कि यार, वी ऑल नो दैट द मोबाइल फोन्स एज अ कैटेगरी, ओके, वो एक तब्दीली के अमल से गुजरेगा, कुछ ना कुछ होगा. गूगल ने जब अपने गॉगल्स बनाए थे, या गूगल के जो वो ग्लासेस थे वो जब आए थे, और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि यार योर एंटायर मोबाइल फोन विल बी कन्फाइंड टू दोज दीज आई पीसेस दैट यू विल बी, आप जो ये चश्मे पहन रहे होंगे, आपका पूरा का पूरा मोबाइल फोन उसमें होगा. इट यू कुड सी, यू कुड रीड क्या नंबर डायल करना है, क्या करना है, वॉइस इंस्ट्रक्शंस के थ्रू वो सुनेगा, एंड एवरीथिंग विल बी इन फ्रंट ऑफ, एंड यू वुड नॉट नीड अ मोबाइल फोन देन. लेकिन हमें पता है कि ये प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हुआ और गूगल ने गालिबन इसको शेल्फ भी कर दिया और जो भी था सिलसिला. लेकिन नाउ एप्पल इज इन दिस बिजनेस. ऑक्यूलस, आपको पता है कि फेसबुक ने उनकी ये मेटा की ये प्रोडक्ट थी, विच इज़ अ रीजनेबली पॉपुलर प्रोडक्ट. सो अब क्या हुआ है दैट एप्पल ने जो है वो इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, जिसको उन्होंने विजन प्रो का नाम दिया है. अब इसको इत्तेफाक से उन्होंने आई विजन का नाम नहीं दिया, बिकॉज आई एम श्योर किसी ने ये नाम पहले से ही रख लिया होगा. और एप्पल के सीईओ टिम कुक साहब जो हैं, उन्होंने इस लॉन्च के हवाले के, उस लॉन्च के दौरान उन्होंने कहा कि दिस न्यू हेडसेट सीमलेसली ब्लेंड्स द रियल वर्ल्ड एंड द वर्चुअल वर्ल्ड. ओके, ठीक हो गया जी. एप्पल ने अपना नया मैकबुक एयर भी अनाउंस किया है, और इसके अलावा लेटेस्ट आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम भी उन्होंने अनाउंस किया. बट लेट अस जस्ट गो बैक टू दिस विजन प्रो. और विजन प्रो की जो प्राइस एप्पल ने अनाउंस की है, दैट इज $3,500. All right, $3,500. अब इसको आप पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो हम ज़ाहिर है एहसास कमतरी का शिकार हो जाएंगे काफी ज्यादा, तो हम ऐसा करते हैं, करते ही नहीं है. लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, अ कंपैरिजन कि इनका जो मेटा ने लास्ट वीक अपना नया वर्चुअल रियलिटी हेडसेट अनाउंस किया था जिसका नाम इन्होंने रखा था क्वेस्ट, उसकी प्राइस $450. तो इनके $450 की प्रोडक्ट की जगह जो ये प्रोडक्ट लेकर आए हैं दिस इज वर्थ $3,500. तो उससे आपको अंदाजा होगा कि एप्पल ने भी एक बहुत ही सर्टन नीश मार्केट, अ वेरी एफ्लुएंट नीश मार्केट को इन्होंने जो है वो टारगेट किया है अपने प्रोडक्ट के अर्ली अडैप्टर्स की हैसियत से. सो या लेट्स सी, आई थिंक मुझे तो ऐसा लगता है कि यार ऑनेस्टली ये तमाम बातें जब मैं सुन रहा होता हूँ ना तो ये मुझे सबके सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामने बच्चा बातें लगती हैं बिल्कुल छोटी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस लेवल की गेम है ना यार, बाकी सारी बातें, मसलन ये कि अभी आपको पता चला होगा बाइनेंस का जिक्र आया आज इंटरनेशनल न्यूज़ में, जो बड़ी खबर थी वो बाइनेंस के हवाले से भी थी. अब आप, मुझे यकीन है कि आप ये पूछेंगे कि ये बाइनेंस, नहीं आप ये नहीं पूछेंगे कि बाइनेंस क्या है, लेकिन अगर जिन लोगों ने हमारा प्रोग्राम पिछले कुछ महीनों से सुनना शुरू किया है, क्योंकि हमारे जो प्रोग्राम सुनते हैं उनको तो पता है कि बाइनेंस FTX पर हमने बहुत तफसील से बात की है. बाइनेंस एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड कर सकते हैं. दुनिया का सबसे बड़ा ये प्लेटफॉर्म जो है ये माना जाता है, माना जाता नहीं, इनफैक्ट ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है. और इसके जो फाउंडर और इसके जो CEO हैं बाइनेंस के, इस कंपनी के ऊपर जो है वो अमरीकी सरकार ने बहुत बड़ा केस कर दिया. और अमरीकी सरकार ने बहुत बड़ा केस ये कर दिया है कि भाई आप जो लोग बाइनेंस का जो अमेरिकन प्लेटफॉर्म था उसमें पैसे जमा करा रहे थे, वहाँ पे जो इनका फाउंडर और उनका CEO है, CZ जिसको कहा जाता है, वो पैसे किसी और अपने एसोसिएटेड बिजनेस में ट्रांसफर कर रहा था. नाउ व्हेन आई बाय द वे द प्राइसेस आर गॉन, और नीचे प्राइसेस आ गई हैं, सब कुछ हो गया है. अभी ऊपर चली गई, $30,000 टच कर रही थी, अभी 25 पे आ गई हैं, कुछ आ गई हैं. बट व्हेन आई थिंक अबाउट दिस एंटायर AI थिंग, व्हाटएवर द कैरिज्मास दैट आर गोइंग, और वो जो एक अजीब और गरीब दुनिया से एक AI की शुरू हो गई है, ये सारी की सारी चीज़ें तो मुझे बहुत बच्चों वाली लगती हैं यार. सीरियसली AI सबका बाप है यार, वाकई वो जो ह्यूमन रेस के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेड है. मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम एक्चुअली एनवियस ऑफ द पीपल हु आर एट द वेरी लेटर एंड ऑफ देयर लाइफ्स, कि यार उनको वो जिंदगी नहीं देखनी पड़ेगी जो हमें शायद अपनी जिंदगी में हम एक्सपीरियंस कर लेंगे. सो आई डोंट नो मैन, बट बहरहाल चलें जी. नाउ कमिंग बैक टू द एप्पल, दे हैव लॉन्च्ड देयर न्यू गैजेट, इट्स कॉल्ड विजन प्रो. इट्स एन ऑगमेंटेड रियलिटी हेडसेट जो कि स्कीइंग करते हुए जो ग्लासेस जैसे लेके ना लगाते हैं आप, उसी तरह के हैं. दे लुक वेरी ब्यूटीफुल. आपको पता है कि एप्पल व्हेन इट कम्स टू डिजाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट, एप्पल इज लाइक सेकंड टू नन इन द इंडस्ट्री. दे हैव डन अ ग्रेट जॉब इन दैट. बट $3,500 का मतलब ये कि एक बहुत ही मखसूस और एक बहुत छोटी सी नीश मार्केट है जिसको वो ये टारगेट कर रहे हैं. वेल आई एम प्रीटी श्योर अ लॉट ऑफ व्लॉगर्स विल बी गेटिंग, जो टेक व्लॉगर्स हैं दे विल बी गेटिंग दिस प्रोडक्ट, और उस पर वो अपने रिव्यूज वगैरह लेकर आ रहे होंगे. Let's see how that product turns out to be. Le chalte hain aapko abhi break ki jaane, milenge aapse is break ke baad. Don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys, ek baar phir se aapko khush aamdeed kehte hain. This is the Sunrise Show with me Adil, aur abhi hum baat karne wale hain amreeki siyasat ke hawale se. Mera bahut hi favorite topic amreeki siyasat, aur usme hum baat karenge Republican Party ke candidates ab mukammal taur se samne aa rahe hain aur apni irade ka izhar kar rahe hain ki unko election mein हिस्सा लेना है. आप जानते हैं कि इस वक्त अमेरिका में जो फ्रंट रनर है रिपब्लिकन पार्टी के, वो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप है. डोनाल्ड ट्रंप इज फार अहेड ऑफ द नंबर टू चैलेंजर, यानी वो कहते हैं ना कोई मुकाबल नहीं दूर तक बल्कि बहुत दूर तक. तो हुआ ये कि इस वक्त नंबर टू पे जो है इस वक्त चैलेंजर उनके सामने वो रॉन डे सैंटिस साहब हैं, और उसके बाद जो है तीसरे नंबर पर अब एक नए कैंडिडेट सामने आ गए हैं जिनका नाम बड़ा जाना पहचाना है और आप जानते भी होंगे, माइक पेंस. जी, अमेरिका के साबिक नायब सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक जमाने में दस्ते रास्त माने जाते थे माइक पेंस, और डोनाल्ड ट्रंप की हर सही गलत बात को डिफेंड करते हुए नजर आते थे. कभी डोनाल्ड ट्रंप गलत बात बोलते हैं तो कहते थे कि ट्रंप भाई की बात को सियाक और सबाक से हटके लिया जा रहा है, वहां के पे डिफेंड किया करते थे. तो वहां के फारूक भाई थे ये. तो लेकिन हुआ ये कि इनके और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान आपस में नाचाकियां और ना इत्तेफाकियां जो है वो बढ़ गईं, और वो बढ़ने की वजह ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे कि माइक पेंस के पास ये इख्तियार था और ये ताकत थी कि वो जो अमरीकी सदारत के जो नतीजे थे, जो रिजल्ट थे, उसको वो रिजेक्ट कर देते, उनके एक जुम्बश कलम से अमेरिका एक बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में 2020 के इलेक्शन के बाद जा सकता था. लेकिन माइक पेंस ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया. आपको पता है उसकी रीजन, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि अमेरिका में जो इलेक्शंस हुए थे वो रिग्ड थे. वो कहते ना स्टॉप द स्टील, यानी द मैंडेट वाज स्टोलन फ्रॉम हिम. और ये अमेरिका की जो डीप स्टेट है और जो एस्टेब्लिशमेंट है, जब उन हमारी वाली एस्टेब्लिशमेंट नहीं, उनकी एस्टेब्लिशमेंट एक डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट जो है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वापस नहीं आने दिया. तो लेकिन माइक पेंस ने उन रिजल्ट्स के नतीज को माना और उन्होंने कहा कि जो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी थी वो उन्होंने पूरी की. और उसके बाद अमेरिका में जो है, बल्कि जो इनकी तकरीब हलफ बर्दारी थी जो बाइडन साहब की, उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप ने शिरकत नहीं की थी, लेकिन माइक पेंस ने जाके जो है वो उसमें शिरकत की थी. बिकॉज आउट गोइंग प्रेजिडेंट हमेशा अटेंड करता है ये तकरीब, और हमेशा नहीं, लाइक बहुत रेयर इंस्टेंसेस, आई थिंक 150-200 साल पहले आखिरी बार ये इंस्टेंस हुआ था कि आउट गोइंग प्रेजिडेंट जो है उसने ये तकरीब हलफ बर्दारी अटेंड नहीं की थी, और डोनाल्ड ट्रंप ने ये नहीं की थी. बिकॉज ही नेवर हैज एक्सेप्टेड डिफीट, अप टिल नाउ उसने अपनी शिकस्त नहीं मानी. लेकिन अब क्या हो रहा है, द थिंग्स आर हीटिंग अप नाउ. द रिपब्लिकन पार्टी है विच इज गोइंग टू चैलेंज जो बाइडन, उसमें अब काफी सारे जो हैं वो लोग सामने मैदान में आ चुके हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप इज एट टॉप, रॉन डिसेंटिस गवर्नर फ्लोरिडा नंबर 2 पर हैं, हम ओपिनियन पोल्स की बात कर रहे हैं. नंबर 3 पे माइक पेंस आते हैं, बाय द वे निकी हेली इज आल्सो देयर, जो कि अमेरिका की, साउथ कैरोलिना से इनका ताल्लुक है, अमरीका की रिप्रेजेंटेटिव रही है यूनाइटेड नेशंस में, ये भारतीय नजाद है. और इसके अलावा एक दो और लोग भी हैं, लेकिन वो इतने खैर क्रिटिकल नहीं है. अब क्या होगा, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, सो द नेक्स्ट स्टेप दैट इज गोइंग टू बी is that ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं इनकी आपस में टेलीविजन डिबेट्स वगैरह शुरू होने वाली हैं थोड़े अरसे में. अमरीका में जो प्राइमरीज का सिलसिला, देखिए इलेक्शन होना है अगले साल नवंबर में, ठीक है, अमरीका में प्राइमरीज जो शुरू होती हैं, यानी जो सियासी पार्टियां अपना कैंडिडेट नॉमिनेट करने के लिए जो इंटरनल इलेक्शन कराती हैं, उसका आगाज जनवरी में होता है. जनरली आयोवा में और नॉर्थ न्यू हैम्पशायर, ये दो स्टेट्स होती हैं जहाँ पे सबसे पहले वोटिंग होती है. बाइडन इसको चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के लिए चेंज कर लिया, बट रिपब्लिकन इज स्टिकिंग टू द ओल्ड फॉर्मेट. आयोवा और नॉर्थ हैम्पशायर से आगाज होता है, फिर उसके बाद मुख्तलिफ स्टेट्स में जो है मामला जाते रहते हैं. सो या उसमें वही है कि टेलीविजन डिबेट्स होंगी और वो होंगे, फिर लोग पुल आउट होना शुरू होते हैं आखिर में. देयर इज जस्ट वन पर्सन हु रिमेन्स इन द रेस, एंड या लग यही रहा है कि अगले इलेक्शन में एक बार फिर जो बाइडन, अगर वो सेहतमंद रहे, जाहिर उनकी सेहत का भी एक है बड़ा मसला, और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हैं. इवन दो डोनाल्ड ट्रंप को अगले इलेक्शन से पहले बहुत सारी कानूनी मुश्किलात का जो है वो सामना कर रहे हैं. आपको पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट वो जो एक केस उनके दिसंबर में उनके खिलाफ जो है वो होने वाला है, हश मनी वाला, कैंपेन फाइनेंसिंग एंड हश मनी रिलेटेड केस. या लेट्स सी. चलो जी, you guys are mostly updated about the big news of the day, so thank you so much for listening. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब होगी कल सुबह एक बार फिर. इवन दो आई एम ऑन इंस्टा लाइव फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट्स, सो यू कैन ज्वाइन मी देयर एट अदील अजहर, दैट्स माय इंस्टा आईडी. लेकिन रेडियो से खुदा हाफिज, इंशाल्लाह कल मिलते हैं. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद.